आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार से देशवासियों को 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाली 4 अमृत भारत ट्रेनों का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9 संस्करण के पुरस्कार। देशवासियों से की स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में की विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा। वाराणसी को स्वच्छता के टॉप 5 सूची में लाने पर दिया जोर, कहा नियमित रूप से चलाया जाए स्वच्छता अभियान। और प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश को 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि वह बिहार में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं, उनमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 4 नई अमृत भारत ट्रेन और सड़क परियोजनाएं प्रमुख तौर पर शामिल हैं। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया है कि प्रधानमंत्री बिहार से जिन 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उनका लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा। इन 4 अमृत भारत ट्रेन में से 2 लखनऊ में आकर समाप्त होंगी। एक अमृत भारत ट्रेन लखनऊ के 4 बाग से होते हुए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन तक जाएगी। वहीं एक अन्य अमृत भारत ट्रेन प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9 संस्करण के पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है।
सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष लखनऊ को 44वां स्थान मिला था। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ की तरफ से राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त किया। सुपर स्वच्छ लीग में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गोरखपुर को 4था स्थान मिला। सहारनपुर जिले ने भी इसी आबादी की श्रेणी में 16वां स्थान हासिल किया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में भी गोरखपुर ने 3रा स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी में हरदोई जिले को राष्ट्रीय स्तर पर 54वां जबकि प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और नोएडा को पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल के मंत्र को आत्मसात कर आज नया उत्तर प्रदेश स्वच्छ एवं हरित राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 से पूर्व देश के प्रमुख औद्योगिक नगरों में आयोजित किए जा रहे रोड शो की श्रृंखला में 3रा मेगा रोड शो आज बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इस रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य अपने निर्यात विजन 2025 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एमएसएमई टेक्सटाइल मंत्री राकेश सचान नेतृत्व करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल या न्यूज अंडरस्कोर GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिले में गतिमान परियोजनाओं को अभियान चलाकर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले धर्मस्थलों को स्थानीय लोगों से वार्ता कर आसपास उपयुक्त स्थल पर विधि विधान से स्थापित किया जाए। स्वच्छता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी को स्वच्छता के टॉप 5 सूची में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माहौल खराब करने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए निर्देशित किया और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल का हवाई निरीक्षण किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चंदौली जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने कई कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। इसी क्रम में चंदौली को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहले ही आ चुका है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चंदौली होते हुए सोनभद्र शक्ति नगर तक पहुंचाने की कार्रवाई और इसको हम लोगों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है, उसके सर्वे के कार्यक्रम आगे चल रहे हैं और बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चंदौली की सीधी कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और देश की राजधानी दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगी। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का।
देश ने कल आकाश प्राइम से लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 2 तेज गति के मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
आकाश प्राइम सेना की आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी शामिल है। इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। ये देश के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रमों के लिए बड़ी सफलता है, जो अब वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर सेना, DRDO और उद्योग जगत को बधाई दी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत अमेठी में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड इस साल के अंत तक AK-203 राइफल के पूर्ण स्वदेशी मॉडल का उत्पादन शुरू कर देगी। IRRPL के CEO मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि अभी रूस के सहयोग से बनाई जा रही AK-203 के पूर्ण स्वदेशी राइफल का नाम शेर दिया गया है। अभी इसका 50% निर्माण भारत में हो रहा है। अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर तक इसका पूर्ण स्वदेशी उत्पादन होने लगेगा।
ये एक भारतीय सेना की टीम द्वारा बनाई जा रही है, यानी कि एज अ यूजर आज की तारीख में हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि इस राइफल को हमने बहुत ही सीरियसली क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से बनाना है। तीसरी चीज जो मुझे खूबी लगती है अपने राइफल में, वो है कि ये जेन्युइन इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट होगा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई स्थानों पर भारी वर्षा होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार से देशवासियों को 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाली 4 अमृत भारत ट्रेनों का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार। देशवासियों से की स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में की विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा। वाराणसी को स्वच्छता के टॉप 5 सूची में लाने पर दिया जोर। कहा, नियमित रूप से चलाया जाए स्वच्छता अभियान। और प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।